उपस्थित सुधीजनों देवियों, हम सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा में अभी पिछले एक डेढ़ महीने से बंद था, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग दिन में थे। बीच में आर्य समाज का उत्सव, फिर स्कूल का इनॉग्रेशन, फिर जन्माष्टमी, कुछ ना कुछ चलता रहा, तो हम बीच में वो बंद था। इससे पहले जो जहाँ तक हमने चर्चा की थी कि जो योग दर्शन में जो यम और नियम की चर्चा है, पांच यमों की हमने चर्चा की, अहिंसा क्या है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सबको हमने डिटेल में चर्चाएं की। आज हम चर्चा शुरू करते हैं नियम के बारे में। नियम का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन, जो हम खुद अपने अंदर के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, वो नियम है। जैसे यम पांच है, इसी तरह नियम भी पांच होते हैं। इसको हम कहते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानी नियमः। शौच का अर्थ होता है सफाई रखना, संतोष मतलब कंटेनमेंट, जो जितना मेरे पास सामर्थ्य है उसी में खुश रहना, तपह मतलब हर परिस्थिति में अपने पेशेंस को बनाए रखना, स्वाध्याय हमेशा खुद पढ़ने की आदत डालना, खुद को पढ़ने की और खुद पढ़ने की आदत डालना, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति, ये पांच चीजें नियम है। ये जो यम और नियम है, ये सबके लिए है, सबको करना है और हमेशा करने के लिए है। खास करके जो लोग अध्यात्म में आना चाहते हैं, जो ईश्वर भक्ति की ओर झुकना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है और 100% जरूरी है। और जो लोग ईश्वर भक्ति में नहीं आना चाहते हैं, सामाजिक जीवन में है, तब भी उनको अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए और सुख और शांति में जीने के लिए भी ये चीजें जरूरी हैं। तो थोड़ी इनकी चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं शौच पर, अगला चलाएं। तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम मेध्या व्यवहरणादि च बाह्यम, ये पतंजलि योग दर्शन का है और उन पर जो कमेंट्री लिखी है महर्षि व्यास ने। तो शौच का मतलब होता है सफाई करना। ध्यान दीजिए, यहां तक कि हमारे यहां जो धर्म का भी लक्षण है, वैसे तो हम जानते हैं धर्म का मतलब सिर्फ इतना है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, घर में आरती अगरबत्ती जलाना, कुछ अपने कोई धर्म ग्रंथ हो उसका थोड़ा पाठ करना, और थोड़ा आगे और जाओ तिलक चंदन लगाना, जप करना, हम जनरली धर्म का अर्थ ये मानते हैं। पर बड़े मजे की बात है, आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उस धर्म के किसी भी शास्त्र में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है धर्म का, पर हम उस धर्म के अनुयायी हैं। पर उस धर्मशास्त्र में धर्म के जो डेफिनेशन है वो ऐसा कहीं नहीं है। और जो है धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, जो मनुस्मृति में आते हैं, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे, उसमें भी ये सफाई एक धर्म का अंग माना गया है, साफ सुथरा रहना। ये सिर्फ धर्म का अर्थ सिर्फ इतना था कि जिसके कारण आप जी सकें, सुख से जी सकें, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी, वो धर्म है। और योग जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति की ओर, अध्यात्म की ओर जाने की जो रास्ता है, उसमें भी सफाई की जरूरत है कि हमारे कपड़े भी साफ हो, हमारा शरीर भी साफ हो, हमारा घर भी साफ हो, हमारा आंगन भी साफ हो, हमारा पड़ोस में भी साफ हो। सफाई का मन के साथ बड़ा संबंध है। आप गंदे कपड़े पहन के रहे 3-4 दिन तक, अगर एक ही कपड़े को पहनते रहे, साफ ना करें, वैसे ही ऑफिस में आपका मन नहीं लगेगा, आप बड़े बड़े डूबे हुए से लगेंगे, बुझे हुए से लगेंगे। पर मजेदार बात यह है, खास करके हमारे धार्मिक संस्थाओं में, भारत में भी और यहां भी आपको मिलेगा, सबसे बड़ी जो कमी आपको दिखेगी वो सफाई दिखेगी। अब भारत में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाइए, काशी, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, रामेश्वरम, कहीं भी आप जाओ, मंदिरों में जाओ, सबसे ज्यादा गंदगी आपको वहीं मिलेगी। मतलब धर्म का जो जो कैरेक्टरिस्टिक है हम उसी को ही छोड़ देते हैं, यहां तक कि अपने जो जो एक्सटर्नल लाइफ में भी, मान लीजिए धर्म को हम बाहरी भी माने तो बाहर भी उसको कदर नहीं करते। तो सफाई बाहर की जरूरी है मन की निर्मलता के लिए, पर ये बाहरी सफाई है। महर्षि व्यास लिखते हैं वो उन दिनों के, देखिए ये इसमें लिखा है, आपको लगेगा ये मिट्टी, वो मिट्टी पानी, इसमें से जो सफाई होती है वो बाहरी सफाई है। तो आपको लगेगा ये मिट्टी और पानी से क्या सफाई है जी, आजकल आप लोग साबुन यूज करते हो, डिटर्जेंट यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, उन दिनों ये सब नहीं होता था। शरीर को साफ करने के लिए भी मिट्टी से ही साफ करते थे, बर्तन भी मिट्टी से ही साफ होते थे, मिट्टी से पानी से ही साफ होता था। वो आज व्यास होता तो वो मिट्टी पानी से नहीं लिखता, वो लिखता साबुन शैम्पू डिटर्जेंट से सफाई करना। तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि भाई कि उन दिनों क्या था, वो क्यों यूज करते हैं। मिट्टी पानी का अर्थ नहीं कि आप अपनी बाहरी शरीर को, अपने कपड़ों को मिट्टी या पानी से साफ करें, उन दिनों ये सब था नहीं तो इन्हीं में से साफ करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं और जो नेचुरोपैथी को मानने वाले हैं, जो नेचुरो जो जाते हैं, वो आज भी सलाह देते हैं कि आप मिट्टी का ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो आपके जो बाहरी शरीर के लिए बड़ा बड़ा लाभकारी है। चलिए ये अलग बात है, पर सिर्फ बाहरी सफाई से हम साफ नहीं होते, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में ज्यादातर आपके ये मीडिया में एक बड़ा अच्छा शब्द है, व्हाइट कलर्ड क्राइम। ये व्हाइट कलर्ड क्राइम क्या होता है कि जो जो साफ सुथरे कपड़े पहन करके क्राइम करते हैं, मतलब महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियां हैं, घर भी अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ बढ़िया है, बिल्कुल जब सभा में जाते हैं तो 10 लाख खड़े हो जाएंगे, इतने शानदार दिखते हैं, पर उसके बावजूद भी वो चोरी करते हैं। पर चोरी ये नहीं कि आपके घर में घुस करके टीवी उठा के ले जाते हैं वा आपके आभूषण ले जाते हैं, वो शेयर में हेराफेरी करते हैं, वो सरकार की पैसे में हेराफेरी करते हैं, वो कंपनी में हेराफेरी करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आप सिर्फ कपड़े साफ पहन लें, साफ घर में रह जाएं, साफ परिवेश में रह जाएं, ये बड़ी जरूरी है, पर इतने में हम अच्छे नहीं होते हैं, हमारी बीमारियां इतने में साफ नहीं होती है। सफाई का संबंध बीमारी से है, शारीरिक रूप से सफाई रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पर इतने में काम नहीं चलेगा। हम सारे साफ कपड़े पहनते हैं उसके बावजूद भी हमें दुनिया भर के मेंटल डिजीज है, मानसिक बीमारियां है, क्योंकि मन की सफाई भी इतनी जरूरी है जिसको हम बार बार इग्नोर करते हैं। हम अपने घर के लिए, शरीर के लिए, हम अपने गाड़ी के लिए जितना ध्यान रखते हैं सफाई का, उतना पैसा उतना ध्यान हम अपने मन की सफाई के लिए नहीं देते हैं, उतना पैसा हम अपनी मन की सफाई के लिए नहीं खर्च करते हैं, उतना टाइम हम अपने मन की सफाई के लिए नहीं खर्च करते हैं, उतना केयर हम अपने माइंड की सफाई के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियां जो मॉडर्न एरा में जो आने लगे हैं वो फिजिकल बीमारियों से ज्यादा मेंटल बीमारियां होने लगे हैं। ठीक है, जहां गरीबी है, अशिक्षा है, अनपढ़पन है, वहां शारीरिक बीमारियां बहुत है। जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, आर्थिक रूप से स्वस्थ होता है, तो उसकी छोटी छोटी शारीरिक बीमारियां कम होती है। और आपको पता है आज से 50-100 साल पहले भारत में भी अगर ये हैजा होती थी, लू मोशन की बीमारी, तो हैजे में ही हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे। प्लेग प्लेग में करोड़ों की संख्या में लोग मर गए। ये जो चिकन पोक्स है, स्मॉल पोक्स है, उसमें भी लोग मर जाते थे। अब ये ऐसे रोग बहुत कम होते हैं भी मरने की संख्या बहुत कम है, क्योंकि समय के साथ साथ लोगों ने सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, मेडिसिन आने लगे, लोग आर्थिक दृष्टि से फाइनेंशियली भी थोड़ा मजबूत हुए, पर नई नई बीमारियां बढ़ने लगी। और वो बीमारियां ज्यादातर जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल की बीमारियां, वो बेसिकली मन से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर से लेकर के स्ट्रेस के कारण जितने तरह की बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन के कारण जो हमारे समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम उसके लिए कोई ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर हम जोर नहीं देते। और क्योंकि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मन, मेरा एक मन भी है, तो उसकी सफाई भी बड़ी जरूरी है। मन की बीमारियां क्या है, मन की मैली गंदगी क्या है, कि जिनके कारण आपको मुझे प्रॉब्लम होता है, हम सबको प्रॉब्लम होता है, जब मेरे मन में गुस्सा उठता है वो सामने वाले को नुकसान करता है नहीं करता ये अलग बात है, पर मुझे नुकसान करता है ये पक्का है। जिसको गुस्सा आता है उसी को ही नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सामने वाले को कितना नुकसान होता है नहीं होता है वो सेकेंडरी है। जब भी मेरे अंदर जेलेसी होती है, पड़ोसी का कोई नुकसान नहीं होता सिवाय मेरे। जब मेरे अंदर अपने लालच होता है, वो और किसी का नुकसान कितना होता है नहीं होता है, पर नुकसान मेरा जरूर होता है। तो इस तरह की जो 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 इमोशनल जो मानसिक बीमारियां है व गंदगियां है, उनको साफ करना भी उतनी ही जरूरी है जितने शरीर को साफ करना। अगले स्लाइड लगाएंगे। इसीलिए पतंजलि कहते हैं आभ्यंतरम चित्त मलानाम आख्यालनम, अपने अंदर की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जैसे घमंड अहंकार करना, जलेसी ईर्ष्या करना, दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखना वगैरह वगैरह। इनसे पड़ोसी का बा जिस पर हम गुस्सा निकालते हैं बा जिसकी बुरा करने की सोचते हैं, उनका जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा नुकसान हमारा होता है। और दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म तो या शांति तो दूर की बात है, वो ज्यादातर समय बेचैन और गलत डिसीजन लेने वाला होता है जो शांत नहीं होता है। इसलिए मनुस्मृति में कहा कि सफाई करनी है तो ये कोई श्लोक बोलते हैं, अद्भीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येह न शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानी न शुद्ध्यति। अपने शरीर और शरीर से रिलेटेड जो भी चीज है, शरीर से रिलेटेड मतलब आपके कपड़े, आपके घर, आपकी गाड़ी वगैरह वगैरह, वो स्वाभाविक पानी और पृथ्वी से, पृथ्वी मतलब सॉलिड लिक्विड या सॉलिड की जो भी चीजें हैं, वो डिटर्जेंट पाउडर हो या शैम्पू हो या और भी 50 तरह के जो शॉप्स हो या पानी हो, उससे साफ होते हैं। पर मन की सफाई के लिए मन सत्ये न शुद्ध्यति, जितना सत्य अपने मन में आएगा, जितनी ईमानदारी, जितनी ऑनेस्टी हमारे चरित्र में आएगा, मन उतना ज्यादा साफ, इतना प्योर होता जाएगा। मन की प्योरिटी से फायदा क्या होता है, मतलब आप बाहरी सफाई रखते हैं तो फायदा क्या होता है कि आप बड़े हल्का महसूस करते हैं, आपको बीमारियां कम होती है। इसी तरह मन जो साफ होता है तो आप भी बड़े बड़े हल्के एहसास करते हैं, आपको मन में हमेशा शांति सी, एक 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 आपको पता नहीं चलता अनजाने से आप क्यों खुश खुश सा महसूस करते हैं। कभी कभी आप सुबह उठ के देखेंगे, जब आप रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो बड़ा आपको भारी भारी शरीर सा लगता है, मन उठने को मन नहीं करता है, शरीर कहीं कुछ करने को मन नहीं करता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, बोझिला बोझिला सा लगता है मन। किसी किसी दिन जब सुबह आप उठते हैं, बिल्कुल आप तितली की तरह उड़ना चाहते हैं, बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, आप उस दिन 10 माइल 8 माइल तक वॉक करने की हालत में होते हैं, उस दिन अगर बच्चे कुछ तोड़ फोड़ कर भी दिया तो भी आपको गुस्सा नहीं आता है, ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हो गई तो भी कहते हो कि नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा, पर किसी किसी दिन प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप चिड़चिड़ाहट होता है। ये क्या है? ये जो मन की अवस्था है। तो जब हम कुछ चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो मन हमेशा उसी तरह रहेगा, खुश रहेगा, शांत रहेगा, बड़ी सी बड़ी समस्या में भी हम खुश रहेंगे, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी हम बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारा मन बेचैन रहता है, भारी रहता है। और सबसे पहला कारण बताया कि अगर मन की सफाई करनी है, जितना अधिक से अधिक हम अपने मन में सच्चाई लाएंगे, जितनी ज्यादा ऑनेस्टी अपने मन के अंदर लाएंगे, उतना मन शुद्ध होगा, ज्यादा प्योर होगा। शुरू शुरू में जब हम सच्चाई को अडॉप्ट करते हैं, सच्चाई का मतलब ही नहीं कि आप हमेशा आप सच बोलें हमेशा, सच्चाई आपके मन में वो ऑनेस्टी हो, अगर आपको लगता है कि बुरा है, आपको वो बुरा बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो। और जरूर ये ध्यान रखिए कि आप सच बोलते समय किस भाषा का यूज करते हैं, किस इंटेंशन के साथ आप यूज करते हैं, ये मैटर जरूर करता है। आप किसी को हर्ट करने के लिए अगर सच बोलते हैं तो वो कम हर्ट होगा, आप ही ज्यादा दुखी मिलेंगे। शुरू शुरू में हो सकता है कि जब हम ऑनेस्ट बनने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किलें होने हो, पर जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि ये व्यक्ति ऑनेस्ट है तो वैसे वैसे आपके काम आसान होते जाएंगे और आप ज्यादा दूसरों के कंपैरिजन हम ज्यादा खुश रहने की कोशिश करेंगे। इसी तरह विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, हम अपने आत्मा को व अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको हम ज्ञान से और तपस्या की चर्चा करेंगे, हर विपरीत परिस्थिति में एक जैसा रहने की आदत डालेंगे तो हम अपने आत्मा की शुद्धता करेंगे। और बुद्धिर ज्ञाने न शुद्धति, और अपने जो इंटेलेक्ट ईश्वर ने दिया है डिस्क्रिमिनेट करने की, अलग करने की, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जो बुद्धि ईश्वर ने दी, ये बुद्धि भी को अगर हम बचपन में जितनी बुद्धि थी आज भी उतनी बुद्धि हो देख तो फिर हम पशु से ज्यादा नहीं बन पाते। तो बुद्धि बढ़ती है जैसा जैसा हमारा ज्ञान बढ़ता है, जिस जिस सब्जेक्ट में आपका ज्ञान बढ़ता है उस सब्जेक्ट में आपका दिमाग ज्यादा अच्छा काम करता है, आपका दिमाग ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव होता है, क्योंकि दिमाग का काम ही है, बुद्धि का काम है कि अलग करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। अगर आप अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट में बहुत नॉलेज आपके पास है तो बाकी लोगों के कंपैरिजन आप बड़े जल्दी डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी उसको शट आउट कर पाएंगे। धर्म के मामले में क्यों ज्यादातर लोग अंधविश्वासी हैं, सुपरस्टिशियस हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग धर्म के मामले में पढ़ते नहीं है, ज्ञान नहीं रखते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई या टोटका वाली किताबें पढ़ करके ज्ञानी बनते हैं। इसीलिए उनके इंटेलेक्ट होते हुए भी वो जो ज्ञान से बुद्धि को शार्पनेस आनी चाहिए वो इस मामले में उनकी बुद्धि इतनी शार्प नहीं होती है। हो सकता है एक व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट हो किसी दूसरे मामले में ज्ञानी हो, पर इस मामले में वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, क्योंकि अपने इंटेलेक्ट को इस मामले में यूज करने के लिए वो बहुत कम समय लगाया, बहुत ज्ञान कम अख्तियार किया। इसलिए ज्ञान से जिस विषय में भी आप अपने बुद्धि को तेज बनाना चाहते हैं उस विषय में ज्ञान होना बड़ी जरूरी है। और ये सब सफाई के माध्यम है, बुद्धि को साफ करनी है तो ज्ञान बढ़ाओ, मन को साफ करना है तो सच्चाई को बढ़ाओ। जब सच्चाई बढ़ती है तो ईर्ष्या द्वेष अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि आप सच्चा होकर के आप जेलेसी नहीं रख सकते, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे से जलता हूं। फिर जब 10 लोगों को कहेंगे कि मैं तुमसे जलता हूं तो लोगों का रिएक्शन सुनते ही अपने आप आपकी जेलेसी खत्म होने लगेगी। तो सच्चाई की एक बड़ी 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 अच्छी बात है कि आप सच्चा होकर के बुरा नहीं हो सकते। इसीलिए मनु ने एक ही शब्द में फिनिश कर दिया कि आप अगर अंदर सच्चाई को लाते हैं अपने आप मन शुद्ध होता जाता है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है योग मार्ग में। अगला चलते हैं नियम का जो तीसरा बिंदु है, वो है संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष क्या है? कहते सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित्सा। जब हम संतोष की बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन या कंटेंटमेंट की, बहुत सारे लोग का मानना होता है कि अगर हम संतोषी हो जाएं तो जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। मतलब मैं जिस पोस्ट पर बैठा हूं, मैं सोचूं कि भाई मैं बस यही संतुष्ट हूं, तो मैं कहीं बड़ा ही नहीं बन सकता। मैं जितना ज्ञान रखता हूं, अगर मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊं तो मैं कभी ज्यादा ज्ञान पा नहीं सकता। तो संतोष तो प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमेशा ऑब्स्टिकल है, बाधा है, ऐसा बहुत सारे लोगों को मानना होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप जहां पर है वहीं खुश होइए, फिर तो आप जैसे ही पैदा हुए 5 साल के हो गए, आपका ज्ञान हुआ, वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि बस सब कुछ ठीक चल रहा है, संतोष होना चाहिए। संतोष का यह अर्थ नहीं कि आप जहां पर है वहीं खुश रहिए। संतोष का यह अर्थ है जितना आपके पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जितना आपको मिलता है उतने में खुश रहिए। अगर जितनी आप में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलता है आप उसमें खुश रहिए। और अगर आपको लगता है कि आप उससे भी ज्यादा एबल हैं, आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, तो करिए। हमारा असंतोष जो है, जो हम दुखी रहते हैं, उसका मूल कारण यह नहीं है कि हम अपने मेरे पास कुछ है, हमारी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास कितनी है। हमारी ज्यादातर समस्या, असंतोष का कारण यह है कि हमारे पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा क्यों है, मेरे रिश्तेदारों के पास मेरे से ज्यादा क्यों है, मेरे दोस्तों के पास मेरे से ज्यादा क्यों है। यहां तक कि हमें उस व्यक्ति से भी लेन देन नहीं जो अनजान व्यक्ति है। कोई अनजान व्यक्ति अगर मेरे से बहुत अच्छा कुछ रखता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संतुष्ट रहूंगा। पर मेरे असंतोष तब भड़कते हैं जब मेरे रिश्तेदार के पास ज्यादा हो जाए, मेरे दोस्तों के पास ज्यादा हो जाए, मेरे जान पहचानों के पास ज्यादा हो जाए, या मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा हो जाए। ये जो दूसरों के थ्रू अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने की जो लालसा है, वही हमारे असंतोष की बीमारी है। मैं अपने नजर से अपने आप को असेस नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा असेसमेंट मेरे पड़ोसी के थ्रू हो, और पड़ोसी के हिसाब से मैं अपने आप को कंपेयर करूं, तब मैं सोचूं कि मैं ठीक हूं कि गलत हूं। वहीं से हमारा असंतोष या दुख शुरू होता है। क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में हर प्राणी, इंसान ही नहीं, हर प्राणी, जो भी लिविंग बींग है, हर एक की जो कैपेबिलिटी है, हर एक के जो सामर्थ्य है, वो बिल्कुल अलग अलग है, सबका अलग अलग है। हर एक का सोच, हर एक का सामर्थ्य, हर एक का रूप रंग सब अलग अलग है। यहां तक कि ऋग्वेद में मंत्र आता है कि एक ही मां के दो जुड़ुए बच्चे, जिसको आप ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर्स कहते हैं, उनमें भी दो एक जैसा नेचर नहीं होता है, एक जैसी क्वालिटी, एक जैसी कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक ही गाय के दो बछड़े हैं, ऋग्वेद का मंत्र है, और दोनों एक जैसा दूध नहीं देते हैं। एक ही इंसान के दो हाथ हैं, राइट एंड लेफ्ट, दोनों एक जैसा काम नहीं कर सकते। जो राइट कर सकता वो लेफ्ट नहीं कर सकता, जो लेफ्ट कर सकता है वो राइट से नहीं होगा। इसका मतलब है ये सृष्टि ही, ये क्रिएशन ही ऐसा ही है कि हर एक अलग अलग है। हमारी समस्या है कि जब हम दूसरों को देख करके खुद असंतोष होते हैं, खुद अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, वहीं से असंतोष शुरू होता है। तो संतोष का पहला नियम है कि जो मेरे में सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य को प्रयोग यूज करने पर जो मुझे मिलता है, मैं उतने में खुश रहने की कोशिश करूं। मेरा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार, अगर मेरे में यह सामर्थ्य है कि मैं एक अच्छा नाचने वाला बन सकता हूं, डांसर हो सकता हूं, और मैं डांस करता हूं, और वो डांस में जो भी मुझे सुख मिलता है, जो प्रशंसा मिलती है, जो धन मिलता है, बस जो कुछ उसके बदले मिलता है, वो दूसरों से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मुझे उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे उसके लिए ये कंपेयर करने की जरूरत नहीं, काश मैं अगर पॉलिटिकल लीडर होता, मेरे पास ज्यादा पावर होता, मैं कोई प्रोफेसर होता तो मुझे लोग ज्यादा सीरियस समझते, मैं कोई बिजनेसमैन होता तो मेरे पास ज्यादा धन होता, वगैरह वगैरह, ये नहीं। क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में सबके अलग अलग, सबके अलग अलग सामर्थ्य है, अलग अलग योग्यताएं हैं, उस योग्यता को जितने ज्यादा प्रयोग करे उसमें कोई मना नहीं है, पर दूसरा बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया, यह असंतोष का जड़ होता है। तो जब हम उस असंतोष को समझते हैं तो फिर हमारे असंतोष कम होने लगते हैं। अब दूसरी चीज है असंतोष का, मनी, पैसा। जब हमारे लक्ष्य सिर्फ पैसा हो जाता है, पैसे के सिवा और कुछ नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति भी कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होता, उसके जीवन में कभी वो कंटेंटमेंट, कभी वो जो तृप्ति नहीं आती है कभी, क्योंकि उसका कोई सीमा नहीं होता है। आप 1000 में खुश नहीं हो सकते, आप लाखों में खुश नहीं हो सकते, आप करोड़ों में खुश नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशन बांधनी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य को पहचाननी पड़ेगी कि मेरी एबिलिटी कितनी है, मेरा सामर्थ्य कितना है, और सामर्थ्य के अनुसार जो मिले उसमें खुश रहने की जरूरत है। क्योंकि जो इच्छा है, जो आशा है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए गीता में और मनुस्मृति में भी कहता है कि कामनाएं कभी शांत नहीं होती हैं, इच्छाएं कभी शांत नहीं होती हैं, इच्छाओं को पूरी करते करते करने का मतलब वैसे ही है जैसे आग में आप घी डालें आग को शांत करने के लिए, जितना, क्योंकि आपको लगता है कि आग में थोड़ा घी डालूं तो आग घी खा करके शांत हो जाएगी, बुझ जाएगा, जितना हम घी डालेंगे आग इतने ज्यादा और तेज जलने लगेगा, उसको और ज्यादा घी की जरूरत पड़ेगी, और घी डालेंगे उसको और ज्यादा घी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह इच्छाओं को पूरी करते रहिए, इच्छाओं का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, उनका कोई 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 फेंस नहीं है, कोई 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 दीवार नहीं है, वो चलते रहते हैं तो भरते रहेंगे, तो कोई सीमा नहीं है उसकी। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग भोगे नहीं जाते, जब हम भोगने की इच्छा रखते हैं कि मैं ये भोगूं वो भोगूं, पता चला हम भोग नहीं भोग पाए, हमारा शरीर ही भूख गया, मतलब शरीर बुढ़ा ही हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा इच्छा को पूरी करते करते इच्छा जवान होती जाती है, हम ही बुढ़े हो जाते हैं। और ये सच है, बचपन से लेकर जब हम अपनी अगर डायरी नोट करें, इच्छाओं की डायरी, कभी कोई लिखता नहीं होगा ऐसी कि मेरी आज क्या इच्छा है, अगर इच्छा की डायरी लिखने लगे आप, माई डिजायर, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, उम्र जितना बढ़ता जाएगा इच्छा उतनी जवान होती जाएगी। आप अगर 80 साल के हैं, आपकी इच्छाएं बिल्कुल बिल्कुल 16-18 साल की होगी, वो ज्यादा उछल कूद करेगी। कभी नोट करने की कोशिश करें, आप ऊपरी चेहरे से ना जाए, वो मन में क्या चलता है वो सोचने की बात है। तो इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, और इच्छाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। और अंकुश कहां लगाएंगे, अब इच्छा नहीं रखेंगे तो जीवन में तो कुछ कर ही नहीं सकते। अंकुश का मतलब है अपने अपना जो सामर्थ्य है उसको पहचानना, उसको समझना कि मेरे में कितना सामर्थ्य है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या एनर्जी के रूप में जो भी है, और उसी स्थिति को पहुंचने के बाद अपने पाने की लालसा को वहीं स्टॉप करना। अगर ये हम नहीं कर पाए जीवन में तो जीवन हमारा हम दुखी रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, संतोष का जो अर्थ है, अगर उसको मैं दूसरे ढंग से कहूं, कंटेंटमेंट मीन्स बी कंपैशनेट विथ योर सेल्फ, खुद के प्रति दया करो। जो लोग असंतोषी हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाते हैं। कैसे? आप आपके पास खाने पीने रहने की जितना जरूरत है सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर आप 70 साल की उम्र में आप 8 घंटे 10 घंटे प्रोफेशनल काम करते हैं, सोशल वर्क न करते, कमाने के लिए काम करते हैं, तो आप अपने शरीर को ही तो टॉर्चर करते हैं। जब आप अपने परिवार को खुद के सुख छोड़ के 18-18 घंटे काम करेंगे तो आप खुद को ही टॉर्चर करते हैं, खुद के ऊपर दया नहीं करते हैं। तो व्यक्ति जब भूल जाता है कि मैं क्यों पाना चाहता हूं, तब वो खुद को भी तड़पाता है और उस तड़प में उसको एक अजीब किस्म की खुशी मिलती है। जैसे जो जो ड्रग की जो अब्यूज करते हैं, जो 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 जिनको ड्रग लेने की बीमारी है, अब जो बहुत ज्यादा उनको आदत पड़ जाता है, वो सांप से भी डसवाते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं। आपको तो इंजेक्शन लेने में डर लगता होगा और वो इंजेक्शन अपने आप फोड़ देता है कहीं भी। वो दर्द उसको, वो दर्द में ही उसको एक उसकी संतुष्टि मिलती है। तो ज्यादातर जब हम बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं और अपने सामर्थ्य को भूल के अधिक परिश्रम अधिक की आशा करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हम नुकसान पहुंचाते हैं वो हम खुद के ऊपर पहुंचाते हैं, हम खुद का नुकसान करते हैं। इसीलिए संतोष का मतलब है खुद के ऊपर दया करो, खुद के शरीर और मन पर दया करो। उसको विश्राम की जरूरत है, उसको शांति की जरूरत है, उसकी सुख की जरूरत है, अगली चीज है तप। तप का भारत जैसे हमारे लिए शब्द होता है तपस्या बोलते हैं, और आजकल आप तपस्या अगर के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, किसी को पूछे तपस्या का क्या अर्थ है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जंगल में जाकर ऐसे सिद्धासन में बैठ के ऐसे आंख बूंद के तपस्या करना। और कुछ लोग तपस्या, अगर आप कभी टीवी में वो कुंभ मेला देखते होंगे या कभी कुंभ मेला में गए होंगे, तो आपको हर तरह के जो लोग दिख जाएंगे, बाबा योगी लोग दिख जाएंगे। अब कोई 12 साल से एक ही पैर पर एक ही टांग पर खड़ा है, तपस्या कर रहा है, कोई क्या भाई आपकी क्या साधना चल रही है, कि मैं 8 साल से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके खड़ा हूं तपस्या कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं, मैं पानी के अंदर 8 घंटे खड़ा होकर के 8 सालों से मैं पानी के अंदर खड़ा हूं। आप क्या कि मैं 15 साल से फलाहार कर रहा हूं, मैं केवल फ्रूट्स खा रहा हूं और कुछ नहीं खा रहा हूं, ये तपस्या है। आप क्या है, मैं दुग्धाहारी हूं, मतलब मैं दूध ही पीता हूं और कुछ नहीं खाता हूं। अब ये तपस्या के अलग अलग अर्थ निकलने लग गए। तप का जो लिटरेरी मीनिंग है, तप ताप, गर्मी समझते हैं, उत्ताप, ताप का मतलब होता है गर्मी, जैसे आग जलता है तो उसका एक ताप निकलता है, गर्मी निकलती है, हीट होती है। गर्मी में क्या होता है, जितने आग तपेगा, आग के अंदर कोई चीज को जितना ज्यादा आप तपाएंगे, अगर या तो वो भस्म हो जाएगा, अगर बचेगा तो वो प्योर होकर बचेगा। जैसे मेटल्स वगैरह, सोना है, लोहा है, चांदी है, अगर आप उसको आग में डालते हैं तो वो शुद्ध होकर निकलते हैं। लकड़ी वगैरह डालते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं, या तो वो भस्म हो जाएगा, बचेगा नहीं, वो अगर बच जाएगा वो इट विल बी मोर प्योर, ये ज्यादा ज्यादा शुद्ध होकर के आएगा। तप का यही लिटरेरी मीनिंग है और जीवन में भी उसी का यही प्रयोग है। तो तप का जो लक्षण बताया, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का मतलब होता है पेयर ऑफ अपोजिट्स, दो विरोधी चीजों का जोड़ा, जैसे सुख और दुख, अच्छा और बुरा, निंदा और प्रशंसा, गर्मी और सर्दी, भूख और प्यास, अच्छा खाना और बुरा खाना, 5-star होटल और पेड़ के नीचे पत्थर पर सोना, ये जो पेयर ऑफ अपोजिट, इन दोनों को जो बराबर परिस्थिति में इन दोनों को पाते समय, दोनों को भोगते समय जब माइंड स्टेट ऑफ माइंड एक जैसा रहे, वो व्यक्ति बहुत ऊपर तक जाता है अध्यात्म में। और उस स्थिति की उस स्थिति को प्रैक्टिस करने का नाम है तप। और ये मुश्किल काम है कि आप कल आपको मौका मिला जमीन पर सोने के लिए, पेड़ के नीचे पत्थर पर, वहां भी आपको वैसे ही नींद आई जैसे नींद आप किसी फाइव स्टार होटल में बुक करके सोते हैं। आप कहीं बहुत बहुत लजीज बड़ा स्वादिष्ट खाना किसी पार्टी में खाकर जितना आनंद लेते हैं, उतना ही किसी जो झोंपड़ी में जली हुई रोटी बिना स्वाद के सब्जी खाकर उतने ही आनंद लेते हैं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड जब बन जाए, जिसको हमारे गीता में व हमारे शास्त्र में समत्व की स्थिति कहते हैं, उस स्थिति पर जब ये स्थिति को पाने के लिए जो प्रयास है, जो कोशिश है, इसी को हम तप कहते हैं। इसको पाने के लिए शुरुआती दौर पर जो प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनको तपस्या कही जाती है। मतलब आप गर्मी में भी रहने की आदत डालिए कि बहुत ज्यादा गर्मी में कभी कभी धूप में भी थोड़ी देर घूमने की आदत डालिए, बहुत ज्यादा सर्दी में कभी आधी रात में खुले घूमने की भी को आदत डालिए। ये आदत जो थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं, आपका बॉडी, देखिए ईश्वर ने हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि वो हर चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी लोग रहते हैं, अरब की और अफ्रीकन जो डिजर्ट है वहां भी लोग रहते हैं, मतलब बहुत गर्मी में भी लोग रहते हैं, बहुत सर्दी में भी लोग रहते हैं, बहुत गरीबी में भी रहते हैं, बहुत धनी में भी रहते हैं। मतलब व्यक्ति रह सकता है अगर शरीर या मन को उसके अकॉर्डिंग ढला जाए। और उसकी जरूरत क्या है? प्रैक्टिस करने की। और जैसे जैसे हमारी निंदा और प्रशंसा, हर व्यक्ति को तारीफ ही पसंद है। निंदा निंदा तो छोड़िए, आजकल तो हम अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी कर देते हैं तो भी तिलमिलाहट हो जाता है, तब भी 8-8 दिन के लिए नींद खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी करना आप लोगों को मंजूर नहीं है, बस आप मेरी तारीफ ही करते रहो। गलती से भी कभी ये नहीं बोलना कि आपको ऐसा नहीं ऐसा कर देते। तो ये जो मेंटेलिटी, ये क्यों बढ़ता है पता है? ये क्यों बढ़ने लगी? जैसे जैसे व्यक्ति का एरोगेंस बढ़ती है, वैसे वैसे हम क्रिटिसाइज के प्रति बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम हत्या कर देते हैं। देखिए महाराष्ट्र में उस व्यक्ति का हत्या कर दिया, वो 20-25 साल से, अभी पिछले हफ्ते उन्होंने एक संस्था है, वैसे ही आर्य समाज का काम है पर आर्य समाज धीरे धीरे ये सब भूलता जा रहा है तो बाकी लोग कर रहे हैं। तो उनकी संस्था का नाम है अंधविश्वास निर्मूलन समिति। जो सुपरस्टिशियंस है उसके खिलाफ वो प्रचार करते हैं, लोगों में मीटिंग्स करते हैं, कोर्ट में भी वो ये सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि इस पर कानून बनाओ। तो इस तरह के जादू टोना, भूत प्रेत ज्योतिष, इन सब पर वो काफी सालों से महाराष्ट्र में पुणे में वो संस्था है और पूरे महाराष्ट्र में बड़े पॉपुलर थे, 20-25 साल से काम कर रहे थे। उनको पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई। मारने वाले पंडित लोग ही थे, जो जो एक संस्था है, हिंदू संस्था, इन्होंने उसको मारा। ये हमारे श्रद्धा पर अटैक किया। ये क्या है कि क्रिटिसाइज को सहने की अब क्षमता नहीं रही। आप बुरा करते हो, ऐसा कोई बोले तो भी हम उसको मार देंगे, क्यों तुमने बोला कि बुरा के, तो नहीं मारेंगे तो हम जिंदगी भर उसका दुश्मन बन जाएंगे। ये जो एटीट्यूड बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये दुनिया भर में बढ़ रहा है। आप ये खतरनाक ट्रेंड है, समाज के लिए भी, खुद के लिए भी। क्यों? हमें सहने की आदत हमारे अंदर कम होती जा रही है। तपस्या का अर्थ है कि सहने की आदत डालो, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, निंदा और प्रशंसा, गर्मी और सर्दी, कोई भी दो एक वन पेयर ऑफ अपोजिट, दो अपोजिट चीजों की जो पेयर है उसको एक जैसी मेंटलिटी के साथ सहने की आदत डालना, इसी को तप कहते हैं। और खास करके जो लोग धार्मिक होना चाहते हैं उनको इस तरह की माइंडसेट बनाने की बहुत जरूरी है। हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में भी ये बड़ी जरूरी है। जितना हम शांत रहेंगे, देखिए जितने आप यम नियम जो कुछ पढ़ रहे हैं उनका मूल उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा शांत, ट्राई टू बी काम एंड कूल, और कुछ नहीं। पर ये इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए ये सब चीजें बताया जाता है। इनको डेली लाइफ में यूज करेंगे तो हमारा जीवन ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर हम उसको अध्यात्म में यूज करेंगे तो हम बाकी लोगों से थोड़ा ऊपर उठेंगे, बाकी लोगों से थोड़ा हम ज्यादा ऊंचा होंगे, ज्यादा ऊपर होंगे, अग्नि होंगे। तो इसी के साथ यहां विराम देते हैं। अब स्मृति जाग। अच्छा, चिदानंद जी आ रहे हैं, तो इस बीच में एक मिनट मैं और एक बात कर देता हूं। ये तपस्या का बड़ा इंटरेस्टिंग बात शायद आपको अच्छा लगे, ये है कि काष्ठ मौन आकार मौनिच, मौन रहना, मौन समझते, चुप रहना भी एक तपस्या है। क्यों? जो चीज करने में मुश्किल है वही तपस्या है, और हमारी बीमारी है कि हम चुप रह नहीं सकते, और खास करके सामने वाला कुछ बोले और हम उसको बिना सुनाए छोड़ दे, ये मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे हम जैसे लोग जो जो जिनका बोलना ही काम है स्टेज पर, कभी कभी भारत में ऐसा होता था कि जब अलग अलग कहीं जाते थे, आपके नीचे उतरने के बाद लोग आपको, जैसे लोग मिलते हैं बात करते हैं, तो उनमें एक दो लोग ऐसे आ जाएंगे कि आपको ही, आपके प्रवचन में अगर उसको कुछ बुरा लगा तो भी आधा घंटा वो सुनाएगा, अगर अच्छा लगा तो भी आपको प्रिपेयर होना है कि आधा घंटा सुनने के लिए। मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है हमें अपने सामर्थ्य को रिवाइव करने के लिए, वापस लाने के लिए। प्लीज जीवन में जब भी मौका मिलता है, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे, चार घंटे चुप रहें, अकेला रहें, और ये प्रैक्टिस करिए। जब भी आपकी किसी के साथ ऐसी नौबत आती है, जब आप कहा सुनी एक दूसरे को बात काटने की नौबत आती है, तो आप प्लीज एक बार अजमा कर देखिए, आप चुप हो जाइए, जो कहना है उनको कहने दीजिए, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चुप हो जाए, देखिए मामला कितना आसानी से निपट सकता है। अब वैसे भी अगर ये आदत आप डालते हैं थोड़ी थोड़ी चुप रहने की, तो ये आगे जाकर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी, अध्यात्म में भी बहुत काम आता है। ये शब्द पता है मौन शब्द बना कहां से? कोई नहीं, आप बैठे में मौन बना, मुनि के द्वारा किया जाने वाला काम मौन है। मुनि वानप्रस्थी को कहते हैं, जब वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचता है तो उसको पहला काम है कि चुप रहने की आदत डालो, कम से कम बोलो। और वो दो तरह की है, एक काष्ठा मौन, एक आकार मौन। आकार मौन हल्का है, मतलब आप चुप हो गए, आप बोलेंगे कुछ नहीं, कभी जरूरत पड़ी तो आपने इशारों से बता दिया, कभी कभी लिख कर बता देते हैं, इशारों से बता देते हैं, क्योंकि आप चुप हैं। काष्ठा मौन उससे बेटर है, और जरूर आप प्रैक्टिस करिए कम से कम एक घंटे के, आधे घंटे के लिए। कभी सोचिए कि मैं आधे घंटे के लिए आज मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, ना मैं फिजिकल रिएक्शन, ना ओरल रिएक्शन कुछ दूंगा, कुछ भी हो जाए। कभी अकेले कमरे में बैठ जाइए, बिल्कुल आपको पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस शांत बैठना है। काष्ठा मौन का मतलब जब आप मन में भी सोचे नहीं, बिल्कुल शांत हो, जब सोचेंगे तभी तो विचार आप बोलने की कोशिश करेंगे, सोचना नहीं है, बिल्कुल स्टॉप कर लीजिए, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। जब भी आप स्ट्रेस में हैं तो भी आप मौन व्रत रखिए, बहुत बहुत लाभ की चीज है। एकांत में रहना थोड़ी देर के लिए जीवन में, अब हफ्ते में कुछ समय के लिए रहिए, महीने में कुछ समय के लिए रहिए, या रोज थोड़ी देर के लिए रहिए, एकांत में रहना और मौन रहना ये बहुत जरूरी चीज है। एक तो रेट्रोस्पेक्शन के लिए भी, खुद को समझने के लिए भी, इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी, और वैसे ही जीवन में ज्यादा शांति के लिए भी प्रैक्टिस करिए थोड़ी देर के लिए, जब भी मौका मिले सबसे अलग अकेले रहने की, और कभी कभी सबके बीच या अकेले रहकर भी चुप रहने की। इनकी चर्चा हम फिर आगे नेक्स्ट संडे को करेंगे, यहीं विराम देते हैं। अब आरती।